ये सवाल है जी नमाज के हवाले से कि यहाँ किस मौके पे और किन किन शरायत पर हम नमाज को कसर कर सकते हैं।
नमाज जो है ये अल्लाह की याद को कायम रखने के लिए फ़र्ज़ की गई है। नमाज बड़ी गैर मामूली चीज़ है, ये खुदा के साथ हमारे रिश्ते का इजहार है। हम काम कर रहे होते हैं, लोगों से बातें कर रहे होते हैं, किसी मशगूलियत में होते हैं, परवरदिगार की तरफ से आवाज़ आती है हय्या अलस्सलाह, तो हम फौरन लब्बैक कहते हैं, हाजिर हो जाते हैं। तो नमाज को ज़िंदगी में ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह के एक बड़ी ही मुकद्दस हस्ती के साथ हमारे ताल्लुक का इजहार होने जा रहा है। इसमें मोहब्बत भी है, ताल्लुक का इजहार भी है, तो अल्लाह की बात और अल्लाह की आवाज़ के ऊपर फौरन लपकना चाहिए। लेकिन पांच वक्त आपको ये पढ़नी है, ज़िंदगी की मशगूलियतों में पढ़नी है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसके बारे में एक तफसीली बात बता दी और ख़ुद कुरान मजीद में बता दी। पांच वक्त जो नमाज आप पर फ़र्ज़ की गई है, लाजिम है, जिसके लिए आपको जवाब देना है। अगर पढ़ेंगे अल्लाह बहुत अजर देगा, अगर नहीं पढ़ सकेंगे तो अल्लाह पूछेगा। वो फ़र्ज़ नमाज है, दो रकतें फजर की, चार जोहर की, चार असर की, तीन मगरिब की, चार इशा की, यही फ़र्ज़ नमाज है। इसके सिवा बाकी सब नफल हैं। आप पढ़ेंगे अल्लाह अजर अता करेगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं पूछेगा। तो फ़र्ज़ नमाज पहले जान लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब बच्चों को ये बताया जाता है कि इशा की 17 रकतें हैं, तो वो पहले ही फैसला कर लेते हैं कि नहीं पढ़नी। एक तो ये फ़र्क अच्छी तरह समझ लीजिए कि जिस नमाज के लिए मैं, आप, हम सब जवाब दें, यानी अल्लाह ताला ने अपने हुजूर हाज़िरी के लिए जो चीज़ लाजिम कर दी है वो फ़र्ज़ रकतें हैं जो मैंने आपको बता दी। किसी ने अगर ये अहतमाम कर लिया, अल्लाह के यहाँ पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आदमी शौक से मज़ीद नफल पढ़ता है, अल्लाह के पैगम्बर भी पढ़ते रहे हैं, मुसलमान भी आमतौर पर पढ़ते हैं, वो नफल है। मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, नफल है। ये जो आप लफ्ज़ सुनते हैं सुन्नत मौक्कदा गैर मौक्कदा, इसका मतलब जानते हैं क्या है? ये वो नफल है जो रसूलुल्लाह ने पढ़े, यानी उनकी असल हकीकत वही नफल है। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि आप बाज़ औक़ात जल्दी में होते हैं, आप अधापी में होते हैं, आपको सफ़र पे जाना है, आप कहीं जहाज़ पकड़ रहे हैं, कहीं गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपको कोई ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाना है। ज़िंदगी में बेशुमार इस तरह की चीज़ें पेश आती हैं। इन तमाम मौक़ों के ऊपर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के पैगंबरों ने इजाज़त दी है कि आप जोहर और असर की नमाज़ को मगरब और इशा की नमाज़ को इकट्ठा कर सकते हैं। यानी जोहर का वक्त हो गया, साथ ही असर पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ सके और असर का वक्त आ गया उस वक्त जोहर पढ़ लीजिए। ये कज़ा नहीं होगी नमाज, ये अदा नमाज है। यही मगरब और इशा में है। मगरब का वक्त हुआ, आपको जहाज़ पकड़ना है, आपको कहीं जाना है, कोई और मजबूरी है, आप मगरब के साथ ही इशा पढ़ लीजिए, ये अदा नमाज होगी। यानी इसमें कोई चीज़ का अदा नहीं हुई। आप निकल खड़े हुए हैं मगरब से ज़रा पहले, आपको मालूम है कि आपको जहाज़ पकड़ने के लिए जाना है, कोई ऑपरेशन करने के लिए जाना है, इशा का वक्त हो गया, अब आपको नमाज का मौका मिला है, वो जो मगरब आपकी रह गई थी उसको साथ पढ़ लीजिए, ये कज़ा नहीं हुई, अदा नमाज होगी। तो एक रियायत दे दी। इसके बाद ये फरमाया है कि ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि आप इस पोजिशन में भी नहीं होते कि आप पूरी नमाज पढ़ सकें, तो इजाज़त दे दीजिए कि सिर्फ जमा ही नहीं कर सकते, आप चार रकतों वाली नमाज को कसर करके दो रकत पढ़ लें। यानी जल्दी है, आप अदापी है, अफरा तफरी है, तो एक मज़ीद रियायत ये दे दी है कि इस तरह के मौक़ों पर आप जो चार रकत वाली नमाज है, यानी जोहर की नमाज की दो रकतें पढ़ लें, असर की नमाज की दो रकतें पढ़ लें, इशा की नमाज की दो रकतें पढ़ लें, मगरब और फजर उसी तरह कायम रहेगी। इसको कसर कहा जाता है। कोई मजबूरी पेश आ गई आपको तो आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ जमा करें, आप ये भी कर सकते हैं कि कसर करें जमा ना करें, आप ये भी कर सकते हैं कि कसर भी कर लें जमा भी कर लें। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब मामलात किए हैं और इसको एक सुन्नत के तौर पर जारी कर दिए। इसके बाद आगे मज़ीद ये मसला पैदा होता है कि जमा और कसर के लिए भी कहीं उतरना पड़ेगा, कहीं खड़ा होना पड़ेगा, इसका भी मौका नहीं है। तो कुरान ने जवाब दिया है कि फर रिजालन और रुकबाना, सवारी पर बैठे हुए पढ़ लो, पैदल चलते हुए पढ़ लो। असल चीज़ यह है कि जब वक्त आ गया है तो आपको जवाब देना है। अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया हय्या अलस्सलाह, आपको कहना है लब्बैक, मैं हाजिर हो गया हूँ। गाड़ी के स्टेयरिंग पर सर झुका दीजिए। कुरान मजीद के अल्फाज पर रिजालन और रुकबाना, पैदल चलते हुए पढ़ लीजिए। जाहिर है कि उसमें सजदा नहीं होगा, उसमें आप बहुत से अरकान अदा नहीं कर सकेंगे, चीज़ें इशारों पर चली जाएंगी, लेकिन उसकी भी इजाज़त दे दी। और आखिरी चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसी मुसीबत मशगूलियत पैदा हो गई है जिससे निकलना ही मुमकिन नहीं, इतना भी नहीं है वक्त, या आप इस पोजीशन में नहीं रहे, مثال کے طور پر سوتے رہ گئے تو جیسے ہی آنکھ کھلے پڑھ لیجئے, وہ بھی قضا نہیں ہوئی, وہ بھی ادا نماز ہے. چنانچہ بڑا مشہور واقعہ ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو رات کے وقت پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا گیا, آپ نے بھی بستر کھول لیا, صحابہ کرام بھی سب لیٹ گئے, تو بلال سے آپ نے فرمایا کہ بلال ذرا خیال رکھنا کہیں تھکے ہوئے ہم سب لوگ فجر کی نماز نہ چلی جائے. ہوا یہ کہ آپ بھی سوتے رہ گئے, صحابہ بھی سوتے رہ گئے اور بلال بھی سوتے رہ گئے, اور فجر نکل گئی, سورج کی کرنوں نے لوگوں کو اٹھایا. بلال سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا, انہوں نے کہا حضور میں نے پوری کوشش کی تھی, غلبت نہیں آیا, میری آنکھیں مجھ پر غلبہ پا گئیں, وہ بھی سو گئے. اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کی, نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ایک صاحب آئے, انہوں نے آپ کہا کہ یا رسول اللہ آج بہت کوتاہی ہو گئی, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, انما التفریق فی الیقظۃ لیست تفریق فی النوم, سوتے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی, جاگتے میں کوتاہی ہوتی. آخری چیز یہ, تو یہ نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ ساری باتیں اللہ کے پیغمبر نے بتا دی ہیں. اس وجہ سے جو میں نے یہ پانچوں چیزیں بتائی ہیں ان کے لحاظ سے نماز کا اہتمام کیجئے. نماز خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے, اس کو محض کوئی اپنے اوپر پابندی نہ سمجھیے, شوق کے ساتھ آپ یوں سمجھا کیجئے کہ آپ کی ماں نے آپ سے کہا ہے کہ بیٹے پانچ منٹ کے لیے میرے پاس جانے سے پہلے آ جایا کرو, آپ کا پروردگار کہتا ہے پانچ منٹ کے لیے میرے پاس آ جایا کرو, تو شوق سے جائیے, لیکن یہ سب رعایتیں اور سہولتیں اس میں دے دی گئی ہیں.